มาเป็นการสมาธิดูยารีปุ่นสุขชาติที่สิบปีที่มันเดินบาสุนัยที่ที่ภาษาไม่วิราชรูปค่าจิตรบังสักได้เพราะที่विराट रूप में भक्ति मार्ग में विष्णु के विराट रूप के चित्त में से ब्राह्मण चोटी को भी उड़ाई दिया है और शिव की यादगार गोल गोल शिवलिंग को भी हटा दिया क्योंकि जो अब्बल नंबर ब्राह्मण चोटी है और उसके साथ साथ जो भी नंबर वाले ब्राह्मण चोटी है उनकी चोटी में ही शिवलिंग देखा जा सकता है बिंदु को तो इन आंखों से देखने की बात ही नहीं जैसे हम आत्मा अपने बिंदु को नहीं देख सकते अति सूक्ष्म है अन्यांशम है अणु को भी वैज्ञानिक लोग यंत्रों से देखते हैं वैसे ही शिवलिंग में वो ज्योति दिखाई तो नहीं पड़ता परंतु सोमनाथ मंदिर में जो लिंगाकार पत्थर था उसमें उस बिंदु की यादगार हीरा जरा हुआ था और वो यादगार हीरा द्वापर के अंत में विदेशी आंकड़ा में लुट लिया तो रोशनी तो आत्मा की ही होती है वो तो सुप्रीम सोल है और सुपरमेंसी वाले मनुष्य तन में ही प्रवेश करता है मना द्वापर के अंत और कलयुग के आग से वो हीरा लोप हो गया इस प्रति से लोप हुआ कलयुग की आगे तो तामसी युग आ गया जो विराट स्वरूप का चित्र है वो भारत में ही बन सकता है असली, परंतु भक्ति मार्ग में उसका असली रूप निकाल करके नकली रूप रख दिया। ये तो ब्राह्मण चोटी को भी उड़ा दिया, जो अब्बर नंबर ब्राह्मण सो अब्बर नंबर देवता सो अब्बर नंबर क्षत्रिय बनता है। और आधा कल्प संपूर्ण आत्मिक स्मृति में रहता है, उसके बाद द्वापर युग से भी स्मृति तो रहती है। परंतु फिर भी द्वैतवादी युग आने से, दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के आने से, अनेक प्रकार के राज्यों का प्रभाव होने से, धर्म का प्रभाव होने से, अनेक प्रकार की भाषाओं के प्रभाव होने से, वो कोई की स्मृति क्षीण होने लगती है। अभी बेचारी याद क्षीण होती है, तो संसार में सब कुछ व्यभिचारी बनने लग पड़ता है। द्वापर के अंत आते आते संपूर्ण व्यभिचारी हो जाते, यहाँ तक कि भारत में विदेशी आक्रांताओं का राज्य स्थापन हो जाता है। तो यथा राजा तथा प्रजा, और इन बातों की शूटिंग कहाँ होती है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार बड़े बड़े सीन के ड्रामा की शूटिंग कलयुग के अंत और सतयुग के आदि होने के टाइम पर होती है। वहां यही कभी चलता है। तो दूसरे धर्मों के पास तो विराट रूप का चित्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि तो और धर्म तो आते ही है आने में। विराट रूप में तो देवताएं भी आती हैं, देवताओं से ऊंचे संपन्न ब्राह्मण भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, चौदह कला संपूर्ण। और द्वापर शुरू होता है द्वैतवादी युग, तो दो दो मतें होने के कारण, दो से चार, चार से आठ मतें होने के कारण सब आपस में लड़ने झगड़ने पड़ते। तो लड़ाई झगड़े का मूल कारण होता है विचार। विदेशी धर्म है, विलमी है, सब में ये भी विचार फैलता है। गुरु नानक की सिख धर्म में बड़ा अंतर आता है, फिर भी तो वृत्ति मार्ग का धर्म है और धर्मों के पास ये विचार के ऊपर जो चित्र बनाते हैं आधा तो जीत जाने के बाद वो धर्म आते हैं, अधूरे टाइम पर आते हैं, इसलिए विराट रूप का चित्र बन ही नहीं सकता। और कोई भी विदेशी धर्म वाले विदेश में ये चित्र बनाए भी नहीं सकते। अभी यहाँ चित्र तो है, परंतु उसका भी समझाने का तो आना है। भक्ति मार्ग का जो चित्र है विराट रूप का, इस विष्णु के विचारे चित्र के ऊपर जो मूल सिर है वो ही नहीं है। सर ने देवताओं को तो दिखाया है, लेकिन उनका भी जो मूल है जड़ है, भूतुनता तो ये बात भी तो समझानी पड़ती है ना। संबोधन को क्यों मार दिया, विदेशियों ने और विदेशियों ने, उनके उड़ाने न उड़ाने की तो बात नहीं, लेकिन भारतवासियों ने क्यों उड़ा दिया? और भारतवासियों में भी ज्यादा संख्या कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण देवताओं की है या न कन्वर्ट होने वाले सष्टरूपी धर्म में सीधे चलने में जाने वालों की है,
कन्वर्ट होने
कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण देवताओं की संख्या बहुत है। तो बताओ जो वाइब्रेशन बनेगा खास भारत में वो हुजूर का बनेगा या मुट्ठी भर आत्माओं का बनेगा? वाइब्रेशन बनेगा सारे संसार में। आगे भले भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, भले राजधानी भी स्थापन हो जाए मूल रूप में, फिर भी उस नई दुनिया की राजधानी दैवी राजधानी का प्रभाव संसार में तब तक नहीं हो सकता जब तक देवता धर्म की जो आत्माएं हैं उनको छोड़ करके बाकी जो भी विदेशियों में कन्वर्ट होने वाले हैं सबका क्या न हो जाए, आत्मा न हो जाए। क्योंकि वो जब तक हैं इस शक्ति रूपी रंगमंच पर तो उनकी संख्या ज्यादा है या कम है?
ज्यादा।
तो वाइब्रेशन कैसा बन रहा है? देवताओं के माफिक क्या वाइब्रेशन बन रहा है या देवात्माओं के संगठन के विपरीत वाइब्रेशन बन रहा है दुनिया का? तो वाइब्रेशन बड़ी शक्ति है। दृष्टि की बड़ी शक्ति है। ज्ञानेंद्रियों की बड़ी शक्ति है। कर्मेंद्रियों की बड़ी शक्ति है। कौन सी बड़ी शक्ति
है?
क्यों?
सूक्ष्म।
हाँ, जितनी सूक्ष्म होती है उतना ही उसका प्रभाव और शक्तिशाली वाइब्रेशन जरूर होता है। यही कारण है सृष्टि में जब ज्ञानेंद्रियों के कोष से संतान होती थी सृष्टि की वृद्धि बढ़ती थी तो भी मनुष्य आत्माओं का पतत्व होता था या नहीं होता था? होता था। परंतु संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं मनुष्य आत्माओं तो क्या सारी सृष्टि की आत्माओं की ऊर्ध्वगति होती है ये लगातार नीचे जाती है। आदि में तो सपोर्ट करने वाले थोड़े ही होते हैं और अंत में सपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ जाती। कोई भी दर्द किताब देखो आदि में उनको धक्के खाने पड़ते हैं क्योंकि उनको सहयोगी बहुत कम होते हैं या होते ही और अंत में देखो उनका ऐसा हुजूम लग जाता है हर एक धर्म में फॉलो करने वाला था। ऐसे ही है भगवान बाप भी जब इस सृष्टि में आते हैं तो अन्य धर्म नेताओं की तरह 100 वर्ष के अंदर ही नए सत्संग की स्थापना करते हैं। और वो श्रद्धा सत्य धर्म की स्थापना तभी प्रत्यक्ष होती है जब अनेक धर्मों का टोटली विनाश भी कैसे होता है स्थापना भी कैसे होती है? क्या कर्मेंद्रियों की भागदौड़ से स्थापना या विनाश होता है? संपन्न या ज्ञानेंद्रियों की पावर आने पर विनाश या स्थापना संभव हो जाती है? कर्मेंद्रिया हो चाहे ज्ञानेन्द्रिया हो, स्थूल है या सूक्ष्म है?
स्थूल है,
स्थूल ही है। नंबर वन, परंतु जो वाइब्रेशन है काई से बनता है मूल रूप
में
शिक्षण मन से बनता है, बुद्धि से बनता है। मन फिर भी चंचल है, मन चलाने वाला मनुष्य कहा जाता है मनमात मनुष्य, मन की औलाद मनुष्य है। मन के कारण ही कहा जाता है, लेकिन मनुष्य तो गिरती कला वाला है या चरती कला वाला है?
गिरती कला वाला
मनुष्य जब से कहा जाता है, भले देवताएं भी हैं मनुष्य रूप में, तो भी युक्ति कला में जाती है या शक्ति कला में जाती है? युक्ति कला में जाती है। देवताओं को संपन्न ब्राह्मण कहेंगे संपन्न ब्राह्मण कौन से युग में होते हैं? संगम में होते। इसलिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली धर्म ब्राह्मण धर्म है। आज भी ब्राह्मणों की पूजा होती है, परंतु ब्राह्मण भी नंबर आ रहे हैं या एक जैसे जैसे धर्म नंबर वाले हैं, वैसे ही उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो ब्राह्मण हैं वो भी नंबर वाले। और जो कन्वर्ट नहीं होते हैं मनुष्य शस्त्र व्यक्ति तने में सीधे जाते हैं, न बाण्यों के धर्मों में कन्वर्ट होते, न बाण्यों के धर्मों में कन्वर्ट होते। उनमें भी नंबर वार हैं, क्योंकि वो मनुष्य शक्ति के बीज हैं। बीज का कभी लोप लोप नहीं होता है। उसका आधार क्या है? तो ठीक है, आत्मा बीज, आत्मा बीज तो देवताओं में भी है, तो क्षत्रियों में भी है, तो विधर्मियों में भी है।
ज्ञान
ब्राह्मण जो है पक्के ब्राह्मण, वो ब्राह्मण वाइब्रेशन की पत्ती होती है, दृढ़ता होती है, और धर्मा धर्मावलंबियों के मुकाबले वो दृढ़ता ही वाइब्रेशन को बनाती है। ऐसी दृढ़ता कार्यम वा कार्यामि देयम वा कार्यामि, माना देह भले छूट जाए लेकिन हम अपना काम पूरा करके छोड़ें। इसमें तो ब्रह्म किशोर भी आती है या नहीं आती है?
आती
है, आती है, आती है। वो तो मन है, मनुष्य से चीता कौन से नंबर का पत्ता है?
पहले नंबर,
पहले नंबर का पत्ता। तो जो मनुष्य शक्ति का पहले नंबर का पत्ता है उसमें भी ये कहता है, परंतु वो सोलह का संपूर्ण है, उसके बाद जो जनरेशन आती है वो सोलह तरह संपूर्ण नहीं होती। और वो बीज है मनुष्यों का, मनुष्यों का बीज मननाथ मनुष्य, मनन करने से मनुष्य होता है, तो बीज कौन हुआ? मन बीज हुआ। और मन सदैव चंचल है या नहीं है? सदैव चंचल है। शक्ति की आगे में, शक्ति की आगे पहले जन्म में चंचल नहीं है, इच्छा मात्र अविद्या है, आप निश्चय इच्छा मात्र अविद्या है, इच्छा आती है जाती है,
इच्छा भी
जब इच्छा का आगमन होता है तो चंचलता हुई या नहीं हुई?
हुई
हुई, लेकिन बाबा कहते हैं भगवान बाप ये बात कहते हैं कि सुख लेना है सुख देना है, गलत बात कहती है या सच्ची बात कहती
है?
तो सुख का लेना या देना इंद्रियों से ही होता है या बिना इंद्रियों के भी हो सकता है?
इंद्रियों
से ही सुख का लेन देन हो सकता है। ज जैसे सत्युग में जन्म देने वाले नारायण लक्ष्मी बचपन से ही इंद्रियों के सुख में है या नहीं है? इंद्रियों के सुख में है, लेकिन किस प्रकार का सुख है? व्यभिचारी सुख है या अव्यभिचारी सुख है? अव्यभिचारी सुख है। कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है। दृष्टि मात्र भी अन्य में कोई आकर्षण नहीं, कोई इच्छा नहीं। इसका मतलब हुआ कि सुख का लेन देन तो करना है, परंतु एक के साथ या अनेकों के साथ? एक के साथ। तो मन जो इच्छा करता है सुख लेने की, ये अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई?
अच्छी।
दुनिया में सब कोई चाहता है हमें सुख मिले, दुख न मिले। सन्यासियों ने तो आर्टिफिशियल बात कह दी, हमें न सुख चाहिए न दुख चाहिए, हमें तो मुक्ति चाहिए। सदा पाए भगवान के लिए कहते हैं बार बार इस सृष्टि पर आता है, जन्म जन्म लगी प्रभु अवतारा, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। और मनुष्य आत्मा के लिए कह देते हैं कि सदा पाए कभी इस सृष्टि पर आना ही नहीं। वो तो बिल्कुल झूठी बात है। एक तरफ कहते हैं आत्मा अविनाशी है, विनाशी और अविनाशी इस सृष्टि की बात है, यह सृष्टि से परे की बात है,
इस सृष्टि की बात,
इस सृष्टि की बात है। अगर अविनाशी आत्मा सदाकाल के लिए सृष्टि से लोप हो जाए तो विनाशी हुई या अविनाशी हुई?
विनाशी।
विनाशी होगी। सन्यासी तो एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। कौन सा झूठ? परमात्मा सर ये आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में जो पहला पत्ता इस सृष्टि का है कृष्ण को भगवान बाप की सृष्टि पर आने पर ब्रह्मा कहो उसका विशेष गुण क्या हुआ? जो सारी मनुष्य शक्ति का बाप कहा जाता है, मात पिता कहा जाता है, बड़ा हुआ या छोटा हुआ?
बड़ा
हुआ। क्या विशेष गुण
है? पहचान
है?
पहचान बाप की, बाप की पहचान। पहचान
ब्रह्मा का विशेष गुण क्या है? देखो मन भले चंचल है फिर भी उसमें विशेष गुण हो सकता है, कोई भी मनुष्य मात्र में वो विशेष गुण हो सकता है, क्या चाहे तो सहन शक्ति धारण करे। जिसको बोला है गीता में, भगवान ने भी बोला है, जो भगवान ने बोला है वो ही भारत का आदि ग्रंथ है, गीता में भी बोला गया। भारत का आदि शास्त्र है तो आदि सो आदि में हर चीज सत्व प्रधान होती है या तम प्रधान होती है? सत्व प्रधान होती है। जब गीता बनाई गई थी द्वापर के आदि में तो द्वापर भी सत्य प्रधान था या तम प्रधान था?
सत्य
प्रधान था। जो गीता बनाई गई वो गीता अंत में जब भगवान बाप आकर के नई सृष्टि की स्थापना करती है कलयुग के अंत में, तो उसी गीता का अर्थ बैठ करके सुनाते हैं क्या? यज्ञ के आदि में वो ही श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक और उनके गुह्य अर्थ बताए जाते हैं। कहावत भी है, कै समझे कवि कै समझे रवि, रवि माने क्या? उस गीता में जो गीत आए हैं जो श्लोक आए हैं किसी कवि ने लिखे हैं कविता के रूप में, बाद में वो कवि जला गया शरीर छोड़ गया, उसके फॉलोअर्स आए उन्होंने परंपरा डाल दी कि ये गुरु जी की व्यास गति है, इस पर जो बैठेगा वो भी व्यास कहा जाए। तो उन्होंने भी अपनी टीका लिखना शुरू कर दी, उसका अर्थ बताना शुरू कर दिया। तो जो कवि कहना चाहता था, कवि का जो भाव है वही भाव उनके फॉलोअर्स में रहेगा क्या?
नहीं।
क्या अंतर होगा जी?
अंतर।
और फिर जन जन मानकर ये परिवर्तन की परंपरा चलती, यहां तक परिवर्तन हुआ कि गीता के टीकाकार ढेर के ढेर जो हुए उनकी टीका में दूसरों की टीका को लेकर के एकदम क्रास आने लगा। शंकराचार्य की गीता ने बताया एक और ब्रह्म मधुदी यो नास्ते, एक ही है दूसरा कुछ नहीं। और मध्वाचार्य की गीता बताती है मूल में ही एक अलग है, सबसे अलग है। और दूसरी वो आत्माएं हैं जो अलग अलग प्रकार से तो हैं भाव स्वभाव संस्कार में, लेकिन उस तुरिया से भी अलग है। मतलब भगवान अलग है और आत्माओं का रूप अलग 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 प्रकार। अब बताओ भारतवर्ष में सन्यासियों में जो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं वो कौन?
शंकराचार्य।
और सन्यासियों को सारा भारतवर्ष मानता है। आज क्या हालत है? जो बड़े बड़े नेताएं हैं ऊंची ऊंची कुर्सियों पर भी बैठे हुए हैं, वो साधु संत महात्माओं को मानते हैं, झुकते हैं या नहीं झुकते हैं? भयंकर प्रभाव। यहाँ तक कि जब यहाँ के साधु संत महात्माओं की पोल पट्टी खुलने लगी तो मारे डर के वो विदेशों में भागने लगे, और विदेशों में जाके ढेर के ढेर संप्रदाय तैयार कर दिए। वो विदेशी भारत में भी आते रहते हैं। विदेशों में उनका बहुत प्रचार प्रसार हो गया। तो देखो सन्यासी और ये धर्म पिता है जिन्होंने सारी दुनिया की मेंटेलिटी को नीचे गिराया है। वो दुनिया की दृष्टि में बहुत ऊंचे उठे हुए हैं और माध्वाचार्य का नाम कोई कोई जानता हो जिन्होंने गीता की बात बताई। गीता में ही लिखा हुआ है कि दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक है अक्षर जो कभी क्षय तो होता ही नहीं, पतित तो होता ही नहीं, क्षीण होता ही नहीं, और दूसरी वो आत्माएं हैं जो क्षय है, क्षय तो होती है, पतित तो होती है, क्षीण होती है। दिव्य गुणों से नष्ट होते हैं। तो बताओ शंकराचार्य गीता के पक्के फॉलोअर हुए या माध्वाचार्य पक्के फॉलोअर? ज्यादा नाम इसका प्रसिद्ध है शंकराचार्य, बहुत नाम प्रसिद्ध। दुनिया ऐसी ही बनती जाती है कि झूठ का बोलबाला बहुत बढ़ता जाता है और सच्चाई लोग होती है। जो सच्चे होते हैं उन्हें कोई पूछता ही नहीं, कोई महत्व नहीं देता। भगवान बाप भी आकर के यही बात बताते हैं कि जिन सच्चे लोगों को, सच्ची मनुष्य आत्माओं को दुनिया ने ठुकराया है, मैं उनका ही आकर के सपोर्ट करता हूं। संवाद में यही बताया। लेकिन जो बताया उस सच्चाई को लोप करने में दुनिया वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यज्ञ के आदि में गीता की जो भी व्याख्याएं भगवान बाप आकर करते हैं उन सारी व्याख्याओं को जमीन दोष कर दिया गया। शूटिंग हुई या नहीं हुई इस बात की
सच्चाई को लुप्त करना।
विदेशी आक्रांताएं आए, विदेशियों ने आपके भारत में जब राज्य किया तो हमारे शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके नदियों में फेंक दिया, जमीन में गाड़ दिया, भाव में सुलगाई दिया। सच्चाई को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विराट रूप का चित्र भी है जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है, गीता में भी आया है। अर्जुन इन चर्म चक्षुओं से भगवान विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकता था, इसलिए उसको दिव्य नेत्र दिए। दिव्य नेत्र और कुछ नहीं है, ज्ञान के नेत्र है। सच्चाई की पहचान विराट रूप के चित्र में वो सच्चाई भगवान आकर के बता दो। क्या सच्चाई? विराट रूप के सिर में देवताएं दिखाए, भुजाओं में क्षत्रिय दिखाए, पेट और जंगाओं में वैश्य दिखाए और पांव में
शूद्रों को दिखाया है।
लेकिन जो सब का मूल है उसको थोड़ा ही कौन है सब का मूल है
शिव
को निराकार है। जैसे आत्मा ही निराकार है, निराकार आत्मा आंखों से दिखाई देती है, नहीं देती। तो प्रत्यक्ष चाहिए या नहीं चाहिए?
चाहिए।
प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। देखो भक्ति मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है? नहीं, भक्ति मार्ग का बीज तो सतयुग के आग से ही पड़ा हुआ है।
संगम मेला पर
दादा लेखराज वाली आत्मा जीवन रहते भगवान के प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचान पाई
नहीं।
और उस ब्रह्मा से पैदा होने वाली वो सारी शक्ति जो नौ कुरियों के ब्राह्मणों में वितरित हो गई, नौकुरी के ब्राह्मण बनते हैं, वो सारे ही ब्राह्मण ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स की चपेट में आए या नहीं आए, प्रभावित हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। यहां तक के विराट रूप की चोटी में जो लिंगाकार दिखाया जाता है यादगार, जिसमें निराकार प्रवेश करता है, जिस निराकार की गांठ उस साकार लिंग के साथ बांधी जाती है, भारत में आज भी परंपरा है पति पत्नी की शादी होती है गांठ बांध देते हैं। गांठ बांधने का मतलब क्या हुआ है? जीवन भर एक दूसरे से बंध करके रहे। परंपरा का अर्थ शुरू होती है कहाँ से?
संगम।
कैसे?
भगवान
क्या परंपरा चालू की? कब कब चालू की थी? भगवान ने बताओ।
भगवान बाप से
है
शंकर को
मिलाई, शंकर को तो भक्तों ने मिला दिया, कोई गांठ बांधना हो गया है शिव शंकर को मिला देने से क्या मिल गए?
शिव समान बन गया शंकर,
शिव समान बन गया
मतलब
शिव शिव की तरह परमात्मा
ही रहता है,
महाशय
संग नहीं
नाम ही रहता है, रहता है
नहीं।
फिर क्यों बोला?
कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए
प्रवृत्ति मारे की गांठ बांध दी।
कब? 76 में गांठ बांध ली।
संगठन की शक्ति है, संगठन का शक्ति गांठ मारे
शरण तल में प्रवेश करते हैं।
हाँ,
वो उनके स्वभाव संस्कार जो है शिव से मतलब मिल जाते हैं, वो उन इसलिए ये गांठ बांधी जाती है, वो जो उनका स्वभाव संस्कार है साकार का वो निराकार।
भक्ति मार्ग में शादी करते हैं तो पति पत्नी की गांठ बांधते हैं, बात हो रही है ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई?
ब्राह्मण की दुनिया जब से ज्ञान में आया है तब से भगवान का शास्त्र पवित्रता का ग्रंथ बन, लेकिन जीवन भर पवित्र रहना है जो आत्मा आते हैं ज्ञान में।
शिव ऊपर से जब आते हैं तो मुकर रथ में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही है ना? तो दोनों आत्माओं के बीच में आशिक कौन हुआ और मासूम कौन हुआ? शिव बाप आशिक है, क्योंकि आशिक ही मासूम के पीछे बाप है, उल्टी बात है। तो शिव सुप्रीम सोल भी जिस पर आशिक होता है या आशिक है कल्प कल्पांतर का उसी की विजय बा और उसी मुकर्रथ में प्रवेश होता है। तो पति पत्नी का संबंध जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? जुड़ा। फिर गांठ बांधी या नहीं बांधी
है?
किस बात की गांठ?
पति आशिक मासूक की गांठ
है तो पति अपना पूरा पत्नी को दे देते हैं। तो शिव बाब आके अपना ज्ञान
और पत्नी अपना पूरा पति को नहीं दे देती
देती
क्या दे देती?
संपूर्ण
संपूर्ण क्या
मन मन
मन पति दे
मन से हो जाती है
दिल देती अपना
मुख्य क्या दे देती?
प्योरिटी देता प्योरिटी
देता मन दे देती देती। अच्छी बात बताई कि मन से हम तुम्हारे हैं तन से भले हम कहीं भी बंधे हुए रहे ऐसे
संपूर्ण
संपूर्ण तो है ही क्या
तन मन धन समय संपर्क संबंध सब कुछ
कन्याओं के पास क्या होता है? व्यक्ति की पावर तन में या मन में तन तो जो रथ है वो रथ है पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार रथ मिलता है या पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं?
पूर्व जन्मों के हिसाब से
पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए होंगे तब ही ऐसा रथ मिलेगा वैसा जैसा मिला नहीं जो नहीं मिलेगा उस को चाक मिलता है धनुष और जहाज मिलता है शंकर चाप जहाज जे चल उतर है पार नर नर मन मनुष्य 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस पर सवार होती है
संकल्प
शंकर चाप
तंदूर चल जाते वाह भाई शिव बाबा जी यही कहते हैं दिल्ली पर सबकी नजर है बाप की भी नजर है। वो तो दिल्ली की बात हुई यहाँ दिल्ली की बात नहीं हो रही है यहाँ काय की बात हो रही है का वो मुकर्रर रथ है आखिरी जन्म का तो जो मुकर्रर रथ है वो धनुष भी कहा गया शास्त्रों में उसका नाम प्रसिद्ध है धनुष यज्ञ हुआ धनुष तोड़ दिया धनुष माने
शरीर
शरीर शरीर के द्वारा शरीर की हड्डियों के द्वारा जो पुरुषार्थ किया जाता है उस पुरुषार्थ में दधीचि ऋषि का नाम बहुत प्रसिद्ध है। दधीचि ऋषि ने क्या किया विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे दिया उन हड्डियों से वज्र तैयार हुआ तो वज्र जो है वो शास्त्रों में सबसे पावरफुल माने जाते हैं। तो ब्राह्मण दुनिया में दधीची कौन हुआ?
ब्रह्मा
बाबा।
ब्रह्मा
ब्रह्मा बाबा दधीची हुए। उनके मुकाबले कोई और ब्रह्मा कुमार है?
मुकरा
जब प्रूफ हो जाए तब की बात है, लेकिन ब्रह्मा वाला का तो प्रूफ आ गया ना कि सारा जीवन में उन्होंने जो भी कमाई की तन से और जो भी तन की ताकत थी वो सारी आखिरी में कहां अर्पण कर दी? ईश्वरीय कार्य में अर्पण कर दी ना। तो हड्डी हड्डी भी स्वाहा कर दी, राख बना दिया, खत्म कर दिया ना। तो वो दधीची की हड्डी से वचन तैयार किया गया, शिव का धनुष भी बनाया गया। उस धनुष के लिए ये कहावत है, सिखों में भी कहावत है, नानक चाप जाहाई। उन्होंने नानक को समझ लिया सदगुरु, तो उनके रथ को आधार बना करके सारी दुनिया पार हो गई। ये तो मनुष्य गुरुओं की बात है, जिन्होंने अपने को भगवान मान लिया साकार। लेकिन वास्तव में बात किसकी है? मुकर्रर रथ की बात है। जरूर उस मुकर्रर रथधारी आत्मा ने पूर्व जन्मों में सत्य को जीवित रखने के लिए असत्य से जन्म जन्मांतर मुकाबला किया होगा या नहीं किया होगा?
किया।
तो समझ में आ जाना चाहिए कि भगवान क्यों आशिक होता है।
अच्छा,
भगवान तो सब शक्तिमान है, उसको किसी पर आशिक होने की क्या दरकार है? क्यों आशिक होता है? कारण
सत्य को पकड़ के रखता है, सत्य को पकड़ कर
रखता। इस संसार में आखिरी सत्य क्या है? जिस सत्य से इस सृष्टि की पैदाइश होती है।
मैं आत्मा
माप को पहले
आत्मा तो सत्य है और आत्माएं तो अनेक हैं, लेकिन उन आत्माओं में वो आत्मा कौन है?
राम बली।
राम बली हटा रहे।
अरे पूरी बात तो सुन लो, वो आत्मा कौन है? उन आत्माओं के बीच में वो आत्मा कौन है जो सृष्टि के सत्य बनने का निमित्त है?
परम धर्म।
कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। सब संबंध मेरे तेरे से। एक त्वम माने संस्कृत में एक को कहा जाता है, तो वो एक आत्मा जो सारी सृष्टि की बीज साधन होती है वो ही सत्य है। एक व्यक्ति के 10-20 बच्चे हैं, फिर उन बच्चों में वो व्यक्ति अपनी सारी पावर किसको सौंपता है?
पहला वर्ष, पहला वर्ष
क्यों
प्योरिटी लंबे समय की प्योरिटी?
हाँ जी, पवित्रता कहो, सत्य कहो, बाप एक ही। गीता में भी है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। सत्य का कभी अभाव
नहीं
है, और झूठ भागता देता है। सत्य बाप खड़ा होता है कि झूठ बाप खड़ा होता है?
झूठ
बाप खड़ा। एक के पीछे 10 बातें बोली, आखिरी जवाब नहीं आएगा तो बात खड़ा हो। तो इस सच्चे रूपी रंगमंच पर सदा काल स्थायी रहने वाला कौन है? सत्य है या नहीं है? या सत्य खत्म होती है तो वो भी खत्म, सारी दुनिया खत्म हो जाती है तो वो सत्य भी खत्म हो जाता है?
नहीं
है?
नहीं,
वो रहता है ना। जो सत्य है सारी दुनिया का, उस सत्य को ही विराट के चित्र में से ये ठीक है, वो सत्य बनता ही तब है जब तीनों लोगों में जो सत्य है। कौन कौन से तीन लोग? सुखदाम, सुखदाम और शांति धाम। शांति धाम माने ब्रह्म लोक। ब्रह्म लोक से लेकर के जितने भी लोक हैं सारे ब्रह्मांड में सब पुनरावृत्ति है। जाना और आना होता ही रहता है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है, चाहे क्षर हो चाहे अक्षर हो, हर आत्मा को इन तीन लोकों में से आना जाना करना ही पड़ता है। परंतु वो आत्मा कौन है सत्य असत्य इस दुनिया में साबित होता है या सत्यधाम में साबित होता है? सत्यधाम में तो सत्य ही सत्य है, बात तो असत्य है ही नहीं। इस दुनिया की बात है सच्चा और जो सत्य है वो एक है या अनेक है?
एक है,
एक है। उस सत्य को ही विराट रूप के चित्र में से उड़ा दो। आप बताओ किसने उड़ाया होगा?
सन्यासी,
सन्यासी ने
उड़ाया। सन्यासियों को करने वालों ने नहीं उड़ाया, वो भागीदार नहीं है।
हाँ,
सन्यासी जिन्होंने माथा टेका वो भागीदार नहीं है, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो सारी दुनिया भागीदार है इस बात के लिए, सत्य को नष्ट करने के लिए, सत्य को भगाने के लिए। तो सारी दुनिया ने सत्य को भगाया, इसकी कभी शूटिंग हुई? संगम में कब?
अंत में,
आदि में ही एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। अभी भी ऐसे ही होगा, जो आदि में आदि में भी ऐसे ही था, बेसिक में लक्ष्मी नारायण के चित्र में घोषणा की गई सन 76 के लिए कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। तो जो आज के बेसिक में हुआ 76 में जब अंत आया तो भी हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बोल देते
आंध्र वाला में ले जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे,
अंदर वाले बाहर वाले ये तो ढेर सारे होंगे। यहाँ पे एक ही बात है भाई, सत्य एक है। असत्य के अनेक रूप है। तो आदि में एक था और सारी दुनिया विरोधी होगी, दूसरी तरफ एक और एक तरफ सारी दुनिया। तो 76 में भी हुआ या नहीं हुआ?
76 में भी हुआ।
कैसे?
बाप एक तरफ बच्चे एक तरफ।
अरे 76 में भी सच्चाई की बात है, मुरलियों में मुरलियों की सच्चाई की बात लो करके सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ थी, सारे ही विरोधी थे। लौकिक संबंधी तो पहले ही विरोधी, गांव वाले भी विरोधी, समाज और सरकार भी विरोधी। भले मारपीट हो या कुछ भी हो या कोई भी धर्म के धक्के खाने पड़े तो सरकार क्या सहयोगी बनती है?
नहीं,
सच्चों की है?
नहीं,
नहीं सही होगी। जैसे और धर्म पिताओं को धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं, ऐसे धक्के खाने पड़े हैं या नहीं खाने पड़े? तो सारी दुनिया एक तरफ हो गई। ब्रह्मा कुमार कोई भी नहीं सुनता, दुनिया वाले तो पहले से ही ब्रह्मा कुमार को विरोधी हो जाते। आज भी सत्य, मध्य भी सत्य और अंत में भी
सत्य,
अंत में भी सत्य। इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि एक ही नर नारायण है जो कभी कभी हार नहीं खाता। क्यों?
सत्य
जीवन रहते हार नहीं खाता, जीवन ही चला जाए ब्रह्मा की तरह, फिर तो कोई हार और जीत की बात होती थी? ओ